न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। यह कहावत हमने और आपने कई दफा समाचार पत्रों और टीवी मीडिया में बुक्स में पढ़ाई होगा। अखबार यानी प्रेस और तोप यानी उस समय की एक ऐसी शक्ति जिसका मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं थी, इसलिए अखबार निकाला गया, इसलिए प्रेस निकाला गया। प्रेस का पहला धर्म सरकार के कामों की आलोचना करते रहना। अच्छे काम है तो वह भी दिखाइए, लेकिन अधिक से अधिक ये कोशिश की जाए कि जो कमियां रह गई हैं वह सरकार को बताएं। और दशकों से इस तरह की पत्रकारिता चलती चली आ रही है, कई पत्रकारिता का आदर्श हुए, कई सरकारों ने पत्रकारिता के रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी गलती मांगी, और कई सरकारें हमने ऐसी भी देखी हैं, कई नेता हमने ऐसे भी देखे हैं जो पत्रकारिता की जो रिपोर्ट जब सामने आती है तो उस पर सही ढंग से काम करते हैं, उनको शाबाशी भी देते नजर आते हैं। लेकिन पिछले साढ़े तीन चार साल से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, यह आरोप लगते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम प्रेस को दबाने का काम कर रही है। आज हम अपने प्रोग्राम में हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार को अपनी आलोचना पसंद नहीं है। हम यह आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आरोप लगातार लगते चले जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर सुजीत नायर सर मौजूद होंगे, इसके अलावा शेषाद्री चारी सर मौजूद होंगे। शेषाद्री चारी सर राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, और आज हम इन्हीं दोनों से चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारिता को दबाया जा रहा है। सीधे बात करेंगे चारी सर से। चारी सर, काफ़ी गंभीर आरोप है बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वे प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, उसको दबाने का काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि जब भी कोई उसके सरकार की थोड़ी सी भी आलोचना करता है या तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या तो फिर उसको ट्रोल किया जाता है। सर क्या सही है, सर क्या हमारे देश में पत्रकारिता का हनन हो रहा है? सर
नहीं, आपने कहा मैं राजकीय दल से जुड़ा हूँ, मैं पत्रकार भी रहा हूँ जी। 12 वर्षों तक मैं संपादक रहा हूँ एक पत्र पेपर का, ऑर्गेनाइजर का मैं 12 वर्षों तक संपादक रहा, अंग्रेजी साप्ताहिक। और जिस फ्रीडम ऑफ प्रेस, पत्रकारिता का स्वातंत्र की आप बात कर रहे हैं, उस पर सबसे बड़ा हनन जो हुआ वो सबसे बड़ा हनन इमरजेंसी में हुआ, और उसी इमरजेंसी में मैं जेल में रहा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक पत्रकारिता और पत्रकारिता पर जो आघात होते हैं उसको समाज कतई सहन नहीं करना चाहिए। आपने कहा पत्रकारिता समाज का अंग है, पत्रकारिता जो है वो समाज का एक साहित्य है। साहित्य का मतलब क्या है? जिसमें हित हो, सहित समाज का जिसमें हित है वो। और आलोचना किसको पसंद है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान को भी अगर हम आलोचना करेंगे तो वो हमारा काम नहीं करते हैं, भगवान को भी प्रशंसा करनी पड़ती है, आप महान हो, आप ये हो और वो हो। ये पत्रकारिता का काम नहीं है, पत्रकारिता का काम दूध का दूध और पानी का पानी करना।
सर इसी दूध का दूध और पानी के पानी में अगर कुछ चीज़ें सही दिखाई जाए, अगर कुछ गलत हो रहा अगर वो बताया जाए, तो सर ये भी तो पत्रकारिता का धर्म है।
बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता जो है वो सही को सही और गलत को गलत, ये करना चाहिए। और अगर सरकार की जो काम है, सरकार के जो काम है वो सही काम है, और उसको अगर पत्रकार कहते हैं कि ये बड़ा सही काम है, तो सरकार को जितनी खुशी होगी, वैसे ही अगर सरकार की आलोचना कोई पत्रकारिता करे तो उससे सरकार को दुख नहीं होना चाहिए। उस आलोचना को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेकर उनको कहना चाहिए कि अगर हमारी गलती है तो हम गलती सुधारने के लिए तैयार हैं। ये सरकार और पत्रकारिता के बीच का संबंध होना चाहिए।
सर क्या पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है? सर
इसमें कोई शक है आपको? सी आज जो वाजपेयी जी और खांडेकर जो उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है, ये उनको रिजिग्नेशन को यू नो दे वर फोर्स टू रिजाइन, उनको फोर्स किया गया रिजाइन करने के लिए। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद प्रधानमंत्री का या शायद उनके पॉलिसीज का उन्होंने जमकर विरोध किया। ओके, अभिसार शर्मा को अगर उन्होंने बोला है कि भाई आप घर पे घर बैठे 15 दिन के लिए, आप ऑफिस मत आए, ये इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के पॉलिसीज को पिछले शायद 2 साल से वो क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। तो द थिंग इज, अगर आप प्रधानमंत्री की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करो तो आपके ऊपर जो है वो यू नो आपके ऊपर कहर बरसता है। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 3 इंसिडेंट ये आज का इंसिडेंट है, हम इसको बहुत पहले से देखना चाहिए। यही इंसिडेंट प्रणय रॉय ने बोला था, यही इंसिडेंट राजदीप सरदेसाई के साथ हुआ था जब उसका CNN IBN उसके हाथ से निकाल दिया गया। ये इंसिडेंट तभी हुआ था जब बरखा दत्त को एक आदमी नौकरी देने को तैयार नहीं था। वेर एवर शी यूज टू गेट एन ऑफर, कोई BJP का आदमी बीच में आता था, कोई उनके लोग बीच में आते थे और उनको उनका लाइसेंस, जो भी उनको नौकरी देने वाले थे उनका लाइसेंस वगैरह में उन लोग बाधा लाते थे। ओके, यही हुआ है करण थापर के साथ। करण थापर ने रिसेंट एक इंटरव्यू दिया, एक भी बीजेपी के वालों को देवर नॉट अलाउड टू स्पीक टू करण थापर। ओके, ये करण थापर के साथ हुआ है, ये हुआ है NDTV के साथ, जस्ट बिकॉज एक प्रवक्ता और एक एंकर के साथ तू मैं होगी। बीजेपी पुट अ गैग ऑर्डर, माने बीजेपी ने अपने लोगों को बताया कि कोई भी NDTV नहीं जाएगा, चारी जी छोड़ करके बीजेपी के एक भी प्रवक्ता, एक भी मेंबर, प्रवक्ता नहीं है चारी जी, मैं बोल रहा हूँ, एक भी मेंबर बीजेपी में जाने से कतराते थे, सॉरी NDTV में जाने से कतराते थे। ये आप, ये हद है यार, हद है, मतलब वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। मतलब आप मेरे इधर मेरा गुण गाओ, मेरे सामने बैठो, आप अर्णब गोस्वामी बनो, मेरे सामने बैठ के मेरा भजन करो, या Zee टेलीविजन जैसे मेरे सामने बैठ के मेरी तारीफों के पुल बांधो, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा तुमको यार, आपका नौकरी चले जाएगा। ये हद है, दिस इज, ये हद के पार है। तो दिस इज व्हाट आई फील।
दरअसल हुआ ये है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि सरकार के कामों के बारे में लगातार अपने रिपोर्ट के बारे में उसमें सच कितना है झूठ कितना है यह बताया जा रहा था, और उसी क्रम में यह आरोप लगे कि वीरेंद्र खांडेकर जो कि ABP न्यूज समूह के थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया है, और विशाल शर्मा जो कि एक TV एंकर है उनको जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। सर आप कई शो करते हैं, ट्रोल्स आपने भी झेले हैं सर,
गाड़ी तोड़ी है अपनी नीचे, लोगों ने आके अपनी गाड़ी तोड़ी है नीचे, अपना ये तोड़ा है अपना, सर हमारे ये तोड़ी है थे उन्होंने अपना बोर्ड, इससे क्या, इससे और ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जो हमको लगता है सही है। देखिए चॉइस आपका है, हम हमारी बात रख रहे हैं, ये आपके ऊपर है, देखना है, वरना स्विच ऑफ करके अगले चैनल में जाना है जिधर आपको सुनना है। तो चॉइस आपको हम दे रहे हैं, हमारी बात मत मानिए, हमारे से डिसएग्री कीजिए, पर ट्रोल करना या हमारा बिजनेस रुकाना या हमारे पे प्रेशर लाना, ये कहाँ की नीति है यार, ये कहाँ का जस्टिस है, और कितने आप करोगे, मतलब आप क्या चाहते हो, 1970s का इंडिया जो एक दूरदर्शन चलता था, जो सिर्फ गवर्नमेंट के गुण गाते रहता था, इज दैट व्हाट यू आर लुकिंग एट? So, ये absolutely, I mean, this is what happened here also.
सर, अगर सरकार को लगता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठ रही है तो उसको दबाने के लिए क्या यह जरूरी है कि उस शख्स को नौकरी से निकलवा दिया जाए? सर
देखिए, इसमें दो बातें हैं, एक और ये एक घटना हम ले रहे हैं भाई, इसका जो ट्रिगर जिसको हम कहते हैं, जिस घटना से ये सारा मामला अभी ऊपर आया है, वो एक छत्तीसगढ़ की महिला ने जो कहा कि वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर उन्होंने अपना खेती में परिवर्तन किया और वो बहुत खुश है और बहुत उसको पैसे मिले, तो एक जो चैनल वाले हैं वो गए उस महिला के पास। अब वो सही तरीके से गए होंगे, उनको लगा होगा कि इनका जो केस है, इस मामला और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इस दृष्टिकोण से शायद गए होंगे। अब जब गए वहां पर तो उनको पता चला कि उस महिला को पैसा दिया गया था और वो ऐसे कहने के लिए, और उस गांव में और किसी ने ये सब नहीं किया था। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो सरकार में एक बहुत बार एक टेंडेंसी होती है कि जो छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते हैं उसको बड़ा चढ़ा कर कहना, इसलिए आपने देखा होगा कि हर TV चैनल जो है वो एक वार्निंग चलाते हैं कि अगर हमारे चैनल में जो दिखाया जाता है उसमें कुछ बड़ा चढ़ा है या कुछ गलत है तो वो हमारे निर्देश पर लाइए, ये कहते भी हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। तो जो सरकार ने बड़ा चढ़ा के कुछ बात कही, सरकार को पोल, सरकार का पोल खोल दिया एक चैनल वालों ने। अब इसमें सरकार को चाहिए कि इस पर वो ये पता करे कि ऐसा कौन सा अफसर था जो ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाकर इस पर तरीके से काम किया। प्रधानमंत्री कार्यालय को और टीवी चैनल वालों को ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो हम दिखाते हैं उसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, प्रचार कितना है, ये देखना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो देखा नहीं गया, ये दुख की बात है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा एक विषय का की ओर निर्देश करना चाहता हूँ मैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो एक और समझो गलत था। मैं ये नहीं मानता हूँ, हम क्षणभर ये भी मान लें कि सरकार ने इस न्यूज़ चैनल के जो मालिक हैं उनको कुछ कहा नहीं, और अगर कहा भी होगा तो क्या न्यूज़ चैनल मालिकों ने जो किया वो सही किया? आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप अपने कार्यकर्ताओं को, आप अपने चैनल चलाने वाले लोगों को नौकरी से केवल मात्र इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार का खंडन किया, सरकार के खिलाफ बोले? तो मीडिया का जो फ्रीडम है वो केवल सरकार की जिम्मेदारी है, जो मीडिया के ओनर हैं।
सर ओनर किस स्थिति में अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं सर, वो भी स्पष्ट होना चाहिए सर। सर इतने सालों तक
मतलब
नहीं सर, अगर इतने सालों तक अगर वो एम्प्लॉई उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, अचानक एक स्टोरी सामने आती है और उसके बाद उसे निकाल दिया जाए, ठीक है सर, मालिकों पर तो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन किन परिस्थितियों में निकाला गया, क्यों निकाला गया सर, इसकी भी सर तलाश होनी चाहिए, इसकी भी बात होनी चाहिए। बिना राजनीतिक सर, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के सर मुझे नहीं लगता कि सर कम से कम इस तरह की नौबत आ जाए कि उसे निकाल दिया जाए सर।
इसका मतलब ये है कि मीडिया के जो मालिक हैं वो मीडिया को एक मिशन के कारण नहीं चला रहे हैं आज, यही मेरा कहने का मतलब है। मीडिया जो है एक धंधा बन गया है, मीडिया प्रोफेशन जो था उसमें एक आदर्श होना चाहिए, तो वो आदर्श की जगह पैसे कमाना, इसके अलावा मीडिया के मालिकों को दूसरा कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए अगर पैसे कमाना है तो हमें सरकार के पक्ष में ही बोलना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए। इस दबाव के अंतर्गत मीडिया के मालिक काम कर रहे हैं और इस प्रकार के जो मालिक जो मीडिया चलाते हैं, जो सरकार के दबाव से डरते हैं, क्या वो समाज के सामने सच्चाई रख पाएंगे?
तो सर फिर ऐसे में सवाल तो फिर सरकार पर भी उठना चाहिए कि आरोप यह लगे कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कई सारे टीवी चैनल को खरीद लिया और अपने समर्थन में उन्होंने स्टोरी चलवाई और आज वो प्रधानमंत्री बने। तो सर सिक्के के दो, अगर ये पहलू है तो दूसरा पहलू भी है सर।
नहीं देखिए,
मीडिया को अगर इस तरह की
प्रधानमंत्री ने कोई मीडिया चैनल नहीं खरीदा
सर, आरोप लगे थे, इसलिए सर मैं आरोप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं।
लेकिन 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 अगर मीडिया चैनल बिके हैं और अगर मीडिया चैनल कुछ ऐसे इर्द गिर्द लोगों के इने गिने लोगों के कारण चल रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति अगर मीडिया में पैसा डालकर उससे कमाई कर रहे हैं, तो इस पर सरकार को 10 बार सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कि इस देश में मीडिया को क्या बिकाऊ होना चाहिए। इस पर जनता के बीच चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इसमें जनता का हित है। अगर इस देश का सारा मीडिया बिक गया तो जनता को मीडिया के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं रहेगा।
सर तो हम शो लेकर यहाँ पर बैठे हैं सर, इसलिए हम आपके लिए यही शो लेकर बैठे हैं कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता। अगर कुछ सरकार, अगर किसी क्षेत्र में अगर सरकार कम पड़ रही है तो वो मीडिया का काम है कि वो मीडिया उसको उजागर करे, और वो हम आपको वादा दिलाते हैं SW न्यूज यह काम लगातार जरूर करेगा। सरकार की हर कमियों में अगर थोड़ी सी भी कमी अगर सरकार के काम में है तो हम वादा करते हैं हम आप तक उस चीज को जरूर पहुंचाएंगे। सर आज जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो रही है पत्रकारों के, सर जिस तरह से सर ने चारी सर ने एक बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही विचार करने वाला एक मसला उठाया दिया है सर, यहाँ पर कमियां अगर सरकारी क्षेत्र में है तो कुछ मीडिया क्षेत्र में भी सर हमें कमियां देखने को मिलती हैं। आज जिन तीन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है सर, जवाबदारी नहीं प्रेस क्लब की, जवाबदारी नहीं स्वयंसेवी मीडिया संगठनों की कि उनके समर्थन में खड़े रहे सर।
पहली बात तो ये है रवि, रवि सी मैं चारी जी से एकदम सहमत हूँ। सी अगर एबीपी अके आनंद बाजार पत्रिका जो इतने पुरानी एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज सच एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक इट्स अ प्री इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके पास इतना दम नहीं है कि वो सरकार के सामने खड़ा रखे और उनके लोगों को समर्थन दे और उनके लोगों के पीछे खड़ा रखे, तो वो ये बिजनेस में रहना ही नहीं चाहिए। तो वो भी अपना चलाए और अपना गुण गाए गवर्नमेंट का, है चैनल्स ना जो कर रहे हैं वो भी करें फिर। अगर आप उनको, आप अपने एडिटर्स को ये बैकअप दे रहे हो कि भाई आप जाके आपको जो आपके मन में है, जो आपका ओपिनियन है वो आप अपने दिल से रखो, अगर जो बोलते हैं ना बिंदास बोलो, अगर ये अगर आप आपके एडिटर्स को आप बोल रहे हो और जब वो कर रहे हैं और जिस दिन आपको कोई आप पे प्रेशर आया, आपने उनके पैर से उनका ये खींच लिया, जमीन खींच ली और यू नो यू कैन लेट देम इन द लर्च। सो आई वुड से शेम ऑन आनंद बाजार पत्रिका जो अपने एडिटर्स के पीछे खड़ा नहीं रह पाए, ये पहली बात। तो आई कंप्लीटली अग्री टू चारी जी। दूसरी बात, देखें एक कंट्री में, एक देश में एक फेयर और फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम गवर्नमेंट का है। जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लॉन्च किया था और गैग ऑर्डर दिया था प्रेस को और प्रेस को बोला था कि आप अब जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे, वो गलती प्रेस से ज्यादा इंदिरा गांधी का था। आज अगर ये गैग ऑर्डर आ रहा है और ये लोग अगर इनके नौकरी जा रही है, तो इनसे ज्यादा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नरेंद्र मोदी का है, वो प्राइम मिनिस्टर है ये भारत का। ही शुड सी दैट सच एन एनवायरमेंट इज नॉट क्रिएटेड। आज वो एनवायरमेंट है। आज अब कोई भी नहीं बोल सकते कि भाई यू नो ये ऐसा नहीं है, ये दिखाया जा रहा है। करण थापर के साथ दिखाया गया था, बरका दत्त के साथ दिखाया गया था, प्रणय रॉय के साथ दिखाया गया था, ये हमेशा यू नो निधि राजदान के साथ दिखाया गया था। सी अब ये बस हो गया, मैं ये हो गया, अब क्लियर है ये कि अगर आप मोदी के अगेंस्ट हो तो आपको कहां ना कहां कुछ ना कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कहां ना कहां गवर्नमेंट आपको आपके अगेंस्ट जाएगी। तो व्हाइल आई कंप्लीटली एग्री टू चारी जी व्हाट इज सेइंग दैट यू नो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था आनंद बाजार पत्रिका एबीपी को उनके एडिटर्स के साथ खड़े रहने का, बट ये एनवायरमेंट क्रिएट करने का कंप्लीट ब्लेम जाता है नरेंद्र मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ को। बिकॉज जब हम इमरजेंसी बोलते हैं हम कांग्रेस सरकार को ब्लेम नहीं करते, हम इंदिरा गांधी को ब्लेम करते हैं, वैसे ही ये इंसिडेंट के लिए हम बीजेपी के साथ साथ हम नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली हम ब्लेम करते हैं। बिकॉज ही शुड हैव एनश्योर्ड दैट दिस इज नॉट हैपेंड, ही शुड हैव एनश्योर्ड, वो एनश्योर करना चाहिए थे कि ये एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट ना हो। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात, आपका लास्ट क्वेश्चन जो है प्रेस क्लब पे, देखिए मुझे नहीं मालूम प्रेस क्लब कैसा फंक्शन करता है और प्रेस, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूम प्रेस क्लब कैसा फंक्शन करता है और प्रेस क्लब कैसा ये और ये एडिटर्स गिल्ट क्या करेगी और ये सब। ऑब्वियसली दे शुड ऑल कम टुगेदर। मैंने एक ट्वीट पढ़ा था निखिल वागले का, जो उन्होंने बोला था कि सब साथ में आना चाहिए। ऑफकोर्स साथ में आना चाहिए और इनके अगेंस्ट खड़े रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग सब अलग अलग रहे तो एक दिन सब एक ने एक हम सब एक एक दिन एक वाजपेयी बनेंगे, एक खानिलकर बनेंगे, एक अभिसार शर्मा बनेंगे, हम एक एक करके हम सब एक एक बार जाएंगे और जो गुण गाते हैं वही रहेंगे फाइनली ये एरिना में।
चलिए शुक्रिया सर आप दोनों का, आप इस चर्चा में दोनों शामिल हुए। तो हमने इस चर्चा में जानने की कोशिश की कि अगर पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है, अगर सरकार के किए गए कामों में कुछ कमियां निकाली जा रही हैं, जिस तरह से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, क्या वो सच है या गलत है, और अगर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसके पीछे की जिम्मेदार कौन है। देखिए एक बात तो साफ हो चुकी है कि अगर आरोप लगाने वाले अगर आरोप सरकार पक्ष पर भी लगाए तो कुछ कमियां मीडिया फ्रेटर्निटी में भी है। आप मजबूत बनिए और मजबूत दावेदारी के साथ रखिए, अपना स्टैंड लीजिए, सरकार का काम है, सरकार अपनी बातें सामने रखेगी, जो अच्छा है उसे जरूर दिखाए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कमी है तो उसे भी दिखाना जरूर चाहिए। बरेली एसडब्ल्यू न्यूज के साथ नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।